Something which I was thinking, you know, days and weeks back.
और कुछ दिनों पहले और कुछ सप्ताह पहले कुछ चीजों को जब मैं सोच रहा था
It was this word which came to my mind.
और ये वचन मेरे मन में आया,
For we are God's masterpiece.
और हम परमेश्वर की मास्टरपीस है.
Actually, I went through different translations for this word, and I got this word from a different translation.
और अलग अलग अनुवाद के अंदर मैं गया और उस अलग अलग अनुवाद के द्वारा मुझे शब्द मिला.
You know, in King James version, it says, "We are His workmanship."
और किंग जेम्स अनुवाद है उसके अंदर लिखा है कि हम उसके हाथ की रचना हैं.
और and in NASB, it says, "We are His workmanship again."
और NASB अनुवाद में भी ऐसे ही कहता है कि हम उसके हाथ की रचना है, उसकी कृति है.
But new NLT version says, "We are God's masterpiece." NLT.
NLT अनुवाद के अंदर इस प्रकार लिखा है कि हम परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है.
Really, when I was thinking upon this, it struck me when I read it, you know, that we are God's masterpiece.
और सच में इस बात से मुझे बड़ा प्रोत्साहन या आशीष मिली जब मैंने इस बात को सोचा कि हम सच में परमेश्वर के हाथ की उत्तम रचना है या उसकी सृष्टि है.
It is not only for me, but it is for each and every one of us.
और ये मेरे लिए नहीं लेकिन हम में से सबों के लिए है.
You know, when I looked into the dictionary for this meaning of this word masterpiece,
और जब ये मास्टरपीस, ये परमेश्वर की सृष्टि, इस शब्द को जब मैं डिक्शनरी में खोजता हूँ,
it is written like this,
और इसको इस प्रकार लिखा है,
the most outstanding work,
और बहुत ही उत्कृष्ट या बहुत ही उत्तम कार्य जिस पर किया जाता है.
You know, when I see as God's masterpiece, then it is what I paraphrase it like this. Kiran, you're mute. Kiran, you're.
जब हम इस प्रकार सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की उत्कृष्ट रचना या सृष्टि हूँ.
You know, when I paraphrase it.
और जब मैं अपने शब्दों में इसको कहना चाहूँ तो.
It is the most outstanding work of God.
ये परमेश्वर का सबसे उत्कृष्ट या उत्तम परमेश्वर का कार्य जिस पे किया जाता है.
Because it's God who has created me and he is my craftsman.
और परमेश्वर है जिसने मुझको बनाया है, वो मेरा रचनाकार है.
And you know, when we go into this word, you know, it is there in Ephesians chapter 2 verse 10.
और इफिसियों 2:20 के अंदर इस वचन को हम पाते हैं.
There it is written that we are God's masterpiece. He has created us. A new in Christ Jesus.
और वहां पे इफिसियों 2:10 में पाते हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं.
So that we can do the good things he has planned for us long ago. It is written that long ago he has planned.
और इन भले कामों को करने के लिए हम सृजे गए हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही करने के लिए तैयार किया है.
So when I was looking at this particular word, the thing what came into my mind was.
इस वचन को जब मैं देख रहा था, विशेष करके जो मेरे मन में आ रहा था, वो ये था.
I put into three different questions.
और तीन अलग-अलग प्रकार के प्रश्नों के अंदर इसको बांटना.
The first one, what first question is.
और पहला प्रश्न वो ये है.
Am I God's masterpiece?
और क्या मैं परमेश्वर के हाथ की रचना हूँ?
And the second question is, what a masterpiece must be like?
और ये अति उत्तम परमेश्वर की जो रचना कैसी होनी चाहिए?
And the third question, what I thought about was, how can I be God's faithful masterpiece?
और तीसरा प्रश्न जो ये है, मैं कैसे परमेश्वर की एक विश्वास योग्य एक रचना, उत्तम रचना कैसे बन सकता हूँ?
When I was looking at this word, when I was meditating on that.
और जब मैं
God's masterpiece.
और पहले प्रश्न की ओर कि मैं कैसे परमेश्वर की एक उत्तम रचना हूँ, कैसे मैं इस प्रश्न के ऊपर सोच रहा था.
It was the Isaiah chapter 43 verse 7.
और यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार कहता है.
There it is written like this, everyone that is called by my name and whom I have created for my glory and whom I have formed. Yeah, whom I have made.
और यशायाह 43:7 में लिखा, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है।
Over there he says he has called, he has created, and he has formed.
और यहाँ पे लिखा है कि उसने हमको बुलाया है, उसने हमको बनाया है।
And that he said that he has made for his glory.
और यहाँ पे वो लिखता है कि उसने अपनी महिमा की हमको सृजा है।
And in NLT version it is written like this: I have called you by name, you are mine. In Isaiah 43 verse 1.
NLT अनुवाद में लिखा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है।
Isaiah 43:1, the last portion.
वहाँ पे लिखा है 43 का एक, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है।
Yeah, God is having the ownership.
और परमेश्वर जो है अपना मालिकाना हक वो अपने पास में रखता है।
You know, when we go to the book of Genesis in the first chapter.
और जब हम उत्पत्ति अध्याय के अंदर शुरुआत में जाते हैं,
there you know there God said,
वहां परमेश्वर ने कहा,
verse 26, Genesis 1:26,
उत्पत्ति 1:26 में,
there you know what God says, let us make people in our image to be like ourselves.
फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं।
Yes, he has made us like him.
और उसने हमें अपने समान बनाया है।
And then he says that they will be masters over all life.
और यहाँ पे लिखा है कि वो सारी जो बातें जो है चीजें उनके ऊपर प्रभुता करने वाले होंगे।
Such was the plan of our creator.
और ऐसा योजना जो है हमारे बनाने वाले परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर की थी।
But what happened later when we see, you know, that relationship broke off.
और हम बाद में क्या हुआ जानते हैं कि वो जो रिश्ता जो परमेश्वर का जो जो था वो टूट गया।
And we just wandered around in our own things and we just left, you know, the creator.
और हम अपने ही चीजों के अंदर दूर चले गए और हमने अपने उत्पन्नकर्ता सृजनहार परमेश्वर को छोड़ दिया।
Now we can go to Ephesians chapter 2 verse 12.
और इफिसियों 2:12 के अंदर हम देखते हैं।
It says over there, I am reading from the NLT version.
और मैं NLT अनुवाद से उसको पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों 2:12।
He says, those days you were living apart from Christ.
और उन दिनों में तुम लोग मसीह से अलग रहते थे।
You were excluded from God's people. That is Israel.
इस्राएल के अंदर वो लोग जैसे कि परमेश्वर के लोगों से बाहर वो निकल गए थे, बाहर निकाल दिया गया था उनको।
And you did not know the promise God had made for them.
और परमेश्वर ने जो वायदा उनके लिए किया था वो वायदे को वो नहीं जानते थे।
You know, the last portion reads like this: you lived in this world without God, without hope.
और वहाँ पे वो अंतिम भाग में कहता है कि तुम बिना आशा के इस संसार में रहे।
This was the life, you know, at one point of time we were living like this without in this world without God, without hope.
और इस प्रकार का जीवन इस संसार में एक समय पर जीते थे बिना परमेश्वर के, बिना किसी आशा के।
But then what happened in our life and in my life was is John chapter verse 1 verse 12.
और यूहन्ना 1 अध्याय उसका 11 वचन हमारे जीवन में हुआ।
John chapter 1 verse 12.
यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन.
There it says that whoever believed in him and accepted him, he gave the right to become children of God.
और यूहन्ना 1:12 में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया।
This is really a wonderful thing, you know, a privilege which God gave to me and to every one of us.
और ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें और उसने हमें ग्रहण करके उसके अपनी संतान बनने का सौभाग्य दिया।
You know, after that, what happened when I have become the child of God?
जब मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ उसके बाद क्या होता है?
In Ephesians chapter 2 verse 19, you know, in my NLT version it is written like this.
और
Ephesians chapter 2 verse 19.
इफिसियों 2:12 के अंदर जैसे एनएलटी अनुवाद में लिखा गया है,
Ephesians 2:19,
इफिसियों 2:19,
so now you Gentiles are no longer strangers and foreigners.
इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हो।
You are citizen along with all of God's holy people.
परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो।
You are members of God's family.
अब आप परमेश्वर के घराने के सदस्य बन चुके हैं।
this is something which touched my heart when I read that, you know, that I am, you know, God's masterpiece.
और इस बात ने मुझे सच में छुआ जब मैंने इसको पढ़ा कि सच में मैं परमेश्वर की एक उत्तम रचना हूँ।
I am no more a stranger. I am no more a foreigner.
अब मैं कोई विदेशी या मुसाफिर नहीं हूँ अभी।
So also we all.
और ये हम सभी के लिए भी है, हम सभी है।
We are God's holy people.
हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा है।
And we are members of God's family.
अब हम परमेश्वर के परिवार के भाग है या सदस्य है।
So when we are God's masterpiece, you know, when we are God's people, we are members of God's family.
और जब हम परमेश्वर की उत्तम रचना है, उसके परिवार के भाग है, उसकी प्रजा है, तब
What a masterpiece must be like? The second question.
दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम उसकी उत्तम रचना बन जाते हैं, तो हमको कैसे होना है?
You know, then I was just thinking, and there the thing what came into me is I need to be like Jesus.
और मुझे जो विचार मेरे मन में है वो ये है कि मुझे मैं जो उसकी उत्तम रचना हूँ मुझे यीशु के समान बनना है।
Yes, in Hebrews chapter 12 verse 2.
इब्रानियों 12:2.
There it is written, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising shame, and had sat down at the right hand of the throne of God.
और इब्रानियों 12:2 में कहता है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा।
You know, here's something I need to understand this, you know, I have to understand my Lord Jesus.
और यहाँ पे मुझे मेरे जो मेरा प्रभु यीशु मसीह उसे समझने की आवश्यकता है।
As when I look at him, there it is mentioned that he was the author and the perfecter of our faith.
और जब मैं उसकी ओर देखता हूँ, वो मेरे विश्वास का कर्ता और उसे सिद्ध करने वाला वो है।
It is not so easy, and it was not easy for him to become the author and the perfecter of our faith.
और ये उसके लिए इतना आसान नहीं था कि वो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला बन जाता इतने आसानी से।
Because when I looked about his life, there was a phase where he had to actually bear that shame and he had to undergo the pain.
और जब मैं उसके जीवन को देखता हूँ, तो सच में वास्तविकता में यीशु को उस दर्द से, उस शर्म से उसे गुजरना पड़ा था।
Yes, in Luke chapter 22, we can read about that.
और लूका 22 के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं।
There are two verses which I took from that chapter.
और लूका 22 में से दो वचन को मैंने लिया है।
It is verse 63 and 64.
उसका 63 और 64 वचन।
You know why I took that? It is not only at the good times I look at Jesus. You know, I have to see Jesus, the shame what he underwent.
और केवल अच्छे समय के अंदर ही मैं उसकी तरफ नहीं देखता या अच्छी बातों के लिए नहीं, लेकिन जो वो शर्म से गुजरा, जो दुख और पीड़ा से वो गुजरा है, उसकी ओर भी मैं देखता हूँ।
Am I ready to go and to be like him? Am I ready or prepared to be like him? In verse 63 and 64, we can read that.
और 63 और 64 में क्या मैं तैयार हूँ उसके समान इससे गुजरने के लिए?
And there it is written that Jesus was mocked and he was beaten.
और यहाँ पे हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि वो उसका मजाक उड़ाया गया, उसको मारा और पीटा गया।
And then we read further that he was blindfolded and he asked him to prophesy and they struck him.
और 64 वचन में लिखा है कि उसकी आंखें ढाप पर उसे पूछा गया, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा?
And yes, it is something like, you know, where that shame he had on. And further also we read in that portion, people have spat at Jesus.
और उस अपमान में से यीशु को गुजरना पड़ा। हम आगे देखते हैं कि कैसे वहां पे लोगों ने उसके मुंह पर थूका है।
The cross of Calvary which he bore,
और कलवरी का क्रूस जो उसने हमारे लिए उठाया,
the hands which was pierced with that nail, the pain which he underwent,
और उस दर्द से जब उसके हाथों को कीलों से ठोका गया, उस दर्द से जो वो गुजरा है,
am I ready like that to be like him?
और क्या मैं उस तरह से यीशु के समान बनने के लिए तैयार हूँ?
To outstand when I am put to shame, to really glorify God.
और जब इस प्रकार से जब मुझे अपमानित होना पड़े या शर्म से गुजरना पड़े, तब मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊँ?
Because there are many people of man of God who really underwent such situations, like this.
क्योंकि परमेश्वर से बहुत सारे ऐसे दास हैं जो ऐसे अपमानजनित परिस्थितियों से गुजरे हैं।
The disciples themselves, they went through lots of difficult times.
और वे खुद अब ऐसे बहुत सारे कठिन हालातों से गुजरे हैं.
Disciples.
और जो शिष्य लोग हैं.
Yes. So it is like I should be ready for that. I should be like my master. I should be like my Lord Jesus Christ.
और मुझे अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए इस तरह से तैयार होना है.
But when if I have to be like that, you know, the third question comes, how can I be God's faithful masterpiece?
अगर मुझे इस प्रकार बनना है तो मुझे तीसरा प्रश्न जो आता है कि कैसे मैं विश्वास योग्य उसकी रचना बन सकता
हूं. Yes, this is something where I wanted to know more about, like how really I can be God's faithful masterpiece, not just a masterpiece, God's faithful masterpiece.
और केवल उसकी उत्तम रचना ही काफी नहीं, लेकिन उसकी विश्वास योग्य उत्तम रचना मैं कैसे बन सकता हूं, उसके ऊपर सोचने की जरूरत है.
This can only happen and when I walk and be in fellowship with God, bearing fruit of the Holy Spirit.
और जब मैं उसके साथ चलता हूं और पवित्र आत्मा के द्वारा उन फलों को जब मैं लाता हूं.
Yes, that we can read in Galatians chapter 5, verse 22 to 25.
और गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके 24-25 में हम इस वचन को पढ़ते हैं.
There we can see the fruit of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के फलों को वहां पर हम देखते हैं.
There we have the 9 fruit of the Holy Spirit, which I need to really bear and really have that in my life.
और सच में 9 पवित्र आत्मा के फलों को जो वहां लिखे हैं उनको मेरे जीवन में लाना है और उसमें प्रतिदिन उसके अंदर बढ़ना है या उसको उसमें बढ़ना है.
You know, when I have that fruit of the Holy Spirit, in verse 24 it says, 5 verse 24, and they that are of Christ Jesus have crucified the flesh with the passion and the lust thereof.
और गलातियों 5:24, और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है.
Yes, that's how when I have that, I am with Jesus and I have crucified the passions.
और अब मैं यीशु मसीह के साथ हूँ, मैंने सारी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है.
And after that we read in verse 25, I live by the Spirit and by the Spirit and the Spirit lets me to walk.
और 25 वचन में लिखा है कि यदि आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी.
You know, we live by the Spirit and the Spirit leads us and it helps us to walk in that.
और तब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं और उससे उसके अनुसार जीवित रहते हैं.
You know, there is a person, you know, in Genesis chapter 5 verse 24.
और उत्पत्ति 5:24 के अंदर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है.
And he is none other than Enoch.
और उसका नाम एनोश है.
Enoch. Yeah. And there about him, one thing which when I read, you know, it was really touching my heart. It touched my heart.
एक चीज जो मैंने हनोक के जीवन के विषय के संबंधित पढ़ी और उसने मुझे उस बात ने सच में मुझको छुआ.
The people before them, it was said different. But over here, when I read in verse 24 about Enoch.
और जब अलग-अलग लोगों के विषय में वहाँ लिखा, लेकिन जब 24 वचन में हनोक के बारे में लिखा.
Enoch walked with God, and he was not. There is a gap.
और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था.
And he was not.
और फिर वह लोप हो गया उसके बीच में.
You know, about that when I see other people, you say they died. It is said they died.
और उसके पहले सारे लोगों के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो वे मृत्यु पाए, ऐसे लिखा है.
But about Enoch it says he was not, for God took him.
और यहाँ पे लिखा एनोक के बारे में कि वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया.
You know, in NLT version it is written like this: he enjoyed a close relationship with God throughout his life.
और NLT अनुवाद के अंदर लिखा है कि बहुत ही नजदीकी का, बहुत ही घनिष्ठ संबंध अनोक ने अपने जीवन काल में परमेश्वर के साथ अनुभव किया.
This is a relationship of a masterpiece of God.
और यही परमेश्वर की जो उत्तम रचना जो होती है वो इस संबंध के बारे में है.
A faithful person, a faithful life which he could live in front of God.
और परमेश्वर के सामने जो एक विश्वासी के जीवन जो जी सकता है.
And in Hebrews chapter 11 we have got lots of masterpiece, but when we see about Enoch in verse 5, Hebrews 11 verse 5.
और इब्रानियों के 11 अध्याय के अंदर बहुत सारे ऐसे परमेश्वर की उत्तम रचना जो है ऐसी हम देख पाते हैं ऐसे लोगों के बारे में, उसमें खासकर इब्रानियों 11:4-5 के अंदर हनोक के बारे में जब वो कहता है.
Over there it says, by faith Enoch was translated that he should not see death.
इब्रानियों 11:5 में लिखा है विश्वास ही से अनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे.
And you know, in NLT version it says, it was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying.
और NLT अनुवाद में लिखा है विश्वास ही से हनोक स्वर्ग उठा लिया गया मृत्यु को देखे बिना.
But one line I liked in that was, but before he was taken up, he was approved as pleasing to God.
और इससे पहले कि वो उठा लिया जाता था उसको सहमति या उसको अप्रूवल मिला कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है.
Yes, it is something where I, when I am walking in the faith, I need to please God, and God has to approve that.
और जब मैं विश्वास में चलता हूँ तो मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है और उस बात को परमेश्वर अप्रूव करता है.
Yes, it is. You see, it's impossible to please God without faith.
और हम जानते कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते.
That is you read in verse in Hebrews chapter 11 verse 6.
इब्रानियों 11:6 के अंदर लिखा हुआ है.
And there it says, anyone who wants to come to him must believe that there is God and that he rewards those who sincerely seek him.
और इब्रानियों 11:6 के दूसरे भाग में लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है.
Yes, it is really a wonderful thing that you know that when I need to be a masterpiece, these are the qualities which I need to have.
और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि मैं परमेश्वर की एक अद्भुत सृष्टि हूँ या रचना हूँ और ये सारे गुण जो है मुझ में होने चाहिए.
Yes, and God has really created me and he is the master. He is the one who has made me.
और परमेश्वर ने मुझको बनाया है और वो मेरा स्वामी है और उसने मुझ वो मेरा रचनाकार है.
And then we saw that we need to see Jesus Christ as the one whom I have to look and to be like to be a masterpiece.
और दूसरी बात जो कि हम परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं ताकि हम उसके समान बनते जाएं.
And thirdly, I need to carry a faithful walk with having the fruit of the Holy Spirit.
और तीसरी बात जिसमें हमने देखा कि मैं विश्वास की दौड़ जो है परमेश्वर के साथ वो चलना है और पवित्र आत्मा के फलों के साथ.
And definitely, you know, God and I can be a masterpiece like that.
और सच में हम वास्तविक रूप से सच में वो परमेश्वर की इस प्रकार की रचना बन सकते हैं.
And it is a hope for everyone of us. It is not only for me. It is for everyone of us.
और ये केवल मेरे लिए नहीं लेकिन हम सबों के लिए एक आशा है.
Finally, I got one word, you know, which one of a young brother gave to me when I spoke to him.
और एक जवान भाई से जब मैंने बात किया तो उस जवान भाई ने इस वचन को दिया.
It's a very nice verse which encouraged me.
और बहुत ही बहुत अच्छा ये वचन है जिसने मुझे प्रोत्साहित किया.
Is a very young brother in our church.
बहुत ही जवान वो भाई हमारे कलीसिया में है.
It says it's in Jude chapter 1 verse 25.
यहूदा chapter 1 इस वचन.
Jude 1:25. All glory to him who alone is our God, Savior, through Jesus Christ, our Lord. Yes, glory, majesty, power and authority belong to him. In the beginning, now and forever.
यहूदा की पत्री पहला अध्याय 25 वचन. उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगान युग रहे आमीन.
Yes, and you know this in the Living Translation it says like this. Living Translation it says like this.
लिखा है.
And now all glory to him who alone is God.
और अब सारी महिमा उस परमेश्वर को केवल जो परमेश्वर है.
Who saves us through Jesus Christ our Lord.
और जो हमें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा उद्धार देता है.
Yes, splendor and majesty, all power and authority are his.
और महिमा गौरव और पराक्रम जो है वो सब उसका है.
From the beginning.
और आदि से लेकर.
It is his.
और वो उसका ही है.
They are and is. They forever shall be.
और वहां
forevermore shall be.
और अनंत का पहले सनातन काल से और आने के युग में अब भी युगानुयुग होता रहेगा.
And then it is written, he is able to keep you from slipping and falling away.
और वहां पे लिखा है कि वो हमको गिरने से बचाएगा या हमको फिसलने से बचा सकता है.
And to bring you sinless and perfect.
और हमको पूरी तरह से परमेश्वर के सामने सिद्ध और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है.
It's very nicely here written. You know, he has got the authority. He is there from the beginning and he'll be there forevermore.
और यहाँ पे बहुत अद्भुत रीति से लिखा है कि वो पहले से आदि से है और हम हमेशा युगानुयुग तक वो आगे बना रहेगा.
And a good thing, assurance and encouragement here it is written, he will keep us from slipping and falling away.
और बहुत ही एक अद्भुत ये जो परमेश्वर ने यहाँ पे प्रोत्साहन दिया कि वो हमें गिरने से बचाएगा.
Yes, he is there to save us when we slip and fall.
और जब हम फिसल जाते हैं गिर जाते हैं तब वो हमको बचाने के लिए हमारे साथ है.
And then it is written that he is there to bring us sinless and perfect.
और वो हमको पाप रहित और पूरी तरह से सिद्ध करके खड़ा कर सकता है
into his glorious presence
अपनी महिमामय उपस्थिति में
with a mighty shout and everlasting joy.
और यहाँ पे एक अनंत काल का जो पराक्रम है या वो महिमा के साथ.
Really, let us thank God that we are his masterpiece.
आइए हम धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर की उत्तम रचना है.
And we have Lord Jesus Christ whom we to follow.
और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह जिसका अनुसरण हम कर सकते हैं.
We have the Holy Spirit which gives us the fruit of the Holy Spirit.
और हमारे पास पवित्र आत्मा है जो पवित्र आत्मा के फलों से हमको भरता है.
And we have great people who have run this race whom we can look at.
और हमारे आसपास ऐसे अद्भुत महान लोग हैं जो हमारे जिनकी ओर हम देख सकते हैं जिन्होंने इस दौड़ को दौड़ा है.
And our God is God who is same today and forever he is the same.
और परमेश्वर आज वही है और हमेशा सदा युगानुयुग एक समान है.
He will never allow me to slip and he will never allow me to fall.
और वो कभी मुझे गिरने नहीं देगा, कभी फिसलने नहीं देगा.
And he'll make me to stand sinless and perfect into his glorious presence.
और उसकी महिमा में उपस्थिति के अंदर मुझे वो पूरी तरह से निर्दोष और पाप रहित खड़ा करेगा.
Praise the Lord.
प्रभु की स्तुति हो.
In Jesus name, amen.
यीशु मसीह के नाम से आमीन.
Coming back to this verse which brother Rajesh read, Ephesians chapter 2 verse 10.
और जो राजेश भाई ने जो वचन पढ़ा मैं फिर एक बार उसको पढ़ना चाहता हूँ. इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और दसवां वचन.
We are his workmanship created in Christ Jesus.
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उसने हमें सृजा है.
And it's written that for good works which God has prepared beforehand.
और यहाँ लिखा है कि मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हमें सृजा गया है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया.
So that indicates that God has created us in Christ Jesus for good works which God has prepared beforehand for each one of us.
और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में इस कारण से सृजा है कि हम कुछ भले काम करें और ये भले काम उसने हमारे लिए पहले से तैयार किए हैं.
And we are encouraged to walk in them.
और यहाँ हमें प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमें इन भले कामों में चलना है.
So it is good to understand even when we are interested in good works, we should make sure that we are engaged in good works which God has prepared for each one of us.
और इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही हमारे अंदर एक इच्छा हो कि हम भले काम करें पर हमें उन भले कामों को करना है जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए आरंभ से तैयार किया है.
Otherwise, there's a danger that we may try to copy someone else.
अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक खतरा होता है कि हम सिर्फ किसी और को देखकर उन्हीं के तरह करने की कोशिश कर रहे हैं.
We should be seeking to do good works which God has prepared for each one of us.
हमें भले काम करने की कोशिश करनी है पर उन भले कामों को जो परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए तैयार किए हैं.
What God has entrusted to me may not be what God has entrusted to you, each one of you.
जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया, मेरे लिए रखे हैं, वो शायद जिम्मेदारी उसने औरों के लिए नहीं रखी है.
So doing everything, engaging in everything as God has planned and prepared for each one of us is very important.
और इसलिए उन सारे कामों को करना जिनकी परमेश्वर ने मेरे लिए योजना की है और जिन कामों को मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है वो हम सब के लिए जरूरी है.
For example, a mother or a wife at home, God has prepared something glorious even for her.
उदाहरण के तौर पर अगर कोई एक माता है या कोई एक पत्नी है जो घर में काम कर रही है उसके लिए भी परमेश्वर ने एक गौरवपूर्ण काम तैयार किया है.
There may not be, any appreciation from people, she may not be very visible to others.
शायद और लोगों से उनकी प्रशंसा नहीं हो रही और लोगों के सामने उनके जो काम है वो दिख नहीं रहे.
But there is a glory in fulfilling whatever God has kept for each one of us.
पर हम में से प्रत्येक के लिए जो काम परमेश्वर ने रखे हैं, उन कामों को पूरा करने में हमें गौरव प्राप्त होता है.
Yeah, otherwise we will be, if we are trying to do someone else's work, it will be very thoroughly unsatisfied life.
अगर हम किसी और के काम करने की कोशिश करते हैं तो वो एक जीवन जो होगा वो उसमें हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे. हम कभी भी तृप्त नहीं महसूस करेंगे.
So therefore, it is important to understand what is our calling and what is entrusted to me.
और इसलिए ये जरूरी है ये बात को जानना कि मेरी बुलाहट क्या है और परमेश्वर ने मुझे क्या सौंपा है.
And we should be grateful and we should be happy over that calling.
और हमें उस बुलाहट के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसी में हमें खुश रहना है.
And within our best of our ability, we should perform that is entrusted to us within the best of our ability.
और जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा है हमारी क्षमता के जितने अच्छे तरीके से हम वो कर सकते हैं हमें उस काम को करना है.
Also, another side is we all know that good works will not save us.
और इसी का दूसरा भाग ये भी है कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो भले काम है उनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता.
Salvation is not through or by good works.
हमारा उद्धार हमारे भले कामों के द्वारा या हमारे भले कामों के वजह से नहीं होता.
But salvation is by faith in Jesus Christ.
पर हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह में हमारे विश्वास के वजह से ही होता है.
But having said that, Bible says in so many places, those who are saved will be engaged in good works.
ये बात बाइबल में लिखने कही गई है उसके बावजूद बाइबल में कई जगह हम पढ़ते हैं कि जिनका उद्धार हुआ है ऐसे लोग भले काम जरूर करेंगे.
Because when we know God, knowing God's character, we will naturally be good.
क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते हैं और हम जब परमेश्वर के स्वभाव को जान लेते हैं तो हम एक प्राकृतिक तौर पर हम अच्छे होते हैं.
If God is good, God is good to others. So when we know God, when we taste that taste God in our own life, we will naturally be good to others.
परमेश्वर अच्छा है और वो औरों के प्रति अच्छा है और इसलिए जब हम परमेश्वर को जानते हैं और हमने परमेश्वर को चख लिया है तो हम भी औरों के प्रति भले काम करते हैं.
We read in a couple of words from Titus.
और हम टाइटस से कुछ वचनों को पढ़ेंगे.
Titus chapter 2.
तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय.
Verse 14.
और उसका 14वां वचन.
Who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds.
तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 14वां वचन में लिखा है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो.
So it speaks that God's people will be zealous for good deeds.
और यहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो भले भले कामों में सरगर्म होंगे.
And same Titus chapter 3 verse 8.
और उसी पत्री में तीतुस की पत्री तीसरे अध्याय के 8वें वचन में.
In the middle of that verse, it is written that those who have believed God will be careful to engage in good deeds.
और उस वचन के बीच में ये लिखा है कि इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले-भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें.
So those who have believed in God, those who have tasted that God is good, it is natural for them to be engaged in good deeds.
और इसलिए जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है जिन्होंने परमेश्वर को चख लिया है वो भले भले कामों में लगे रहेंगे.
So it is not a matter of doing the copying the good deeds which someone else is doing.
और ये ऐसी बात नहीं है कि हम किसी और के भले कामों को देखकर उसी प्रकार करते हैं.
I should be doing and I should be engaged in doing good deeds which the Lord has prepared for me.
मुझे उन भले कामों को करना है जिनको परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है.
So that I need not enter the field of others.
अगर मैं ऐसा करूं तो मैं किसी और के क्षेत्र में दखलअंदाजी नहीं करूंगा.
I need not envy or I need not compare myself with others.
मुझे किसी और को देखकर जलन नहीं होगी या मैं किसी और के साथ अपनी तुलना नहीं करूंगा.
I am accountable for what is entrusted to me.
जो मुझे सौंपा गया है मैं केवल उसके लिए मुझे जिम्मेदारी लेनी है.
and also verse 14 in Titus chapter 3, Titus chapter 14.
और तीतुस के पत्री उसका तीसरा अध्याय और 14वां वचन.
Our people must also learn to engage in good deeds to meet pressing needs, so that they will not be unfruitful.
हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगा रहना सीखे, ताकि वो निष्फल ना रहे.
So God's people will be sensitive to pressing needs of others.
और इसलिए जो परमेश्वर के लोग हैं, वो उनके आजू बाजू में जो आवश्यकता है उनके प्रति वो एक संवेदना रखेंगे.
So that they will not be unfruitful.
और इसलिए कि वो निष्फल ना होंगे.
So it is good to remember that any little thing God has entrusted us.
और इसलिए ये याद रखना अच्छा है कि कोई भी छोटी चीज जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है,
in our own circle of influence,
जहां कहीं हमारा जो क्षेत्र है, जिन लोगों के बीच में हम है,
no other human being may be seeing that.
शायद दूसरा कोई भी व्यक्ति ये देख नहीं रहा है.
But we know that, God knows that.
पर हम उसको जानते हैं और परमेश्वर उसको जानता है.
So we should be sensitive to meet those pressing needs.
और इसलिए हमें ये जो आवश्यकता है इनके प्रति संवेदना रखनी है कि हम उन्हें पूरा करें.
Therefore, by being fruitful.
और उस ऐसा करने के द्वारा हम फल दे सकते हैं.
So that is a very satisfying life.
और ये बहुत है एक तृप्त करने वाला जीवन होगा.
Learning to understand what God has prepared for me or entrusted to me.
हमें ये सीखना कि परमेश्वर ने मुझे क्या सौंपा है और मेरे लिए क्या तैयार किया है.
And doing that within the best of our ability and the grace God has given.
और मैं मेरे जो जितना संभव है उतने अच्छी तरीके से और जो कृपा परमेश्वर मुझे देता है उसके द्वारा मुझे उसे पूरा करना है.
There's a great blessing in that.
और इस ये करने में एक बहुत बड़ी आशीष है.
Coming to Matthew chapter 25.
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय.
This is something which recently encouraged me.
और फिलहाल इस वचन ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया.
This is in the background of the final judgment when Jesus Christ will come again.
और इसका संदर्भ है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा और जो आखिरी न्याय का दिन होगा.
And he will it's written that in verse 32 that he will separate the sheep and the goat.
और 32वें वचन में लिखा है कि वो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा.
Like a shepherd will separate.
जैसा एक चरवाहा करता है.
The sheep on the right side and the goats on the left side.
और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाई ओर खड़ा करेगा.
And it says that verse 33 verse 34 the king will say to those on his right.
और 34 वचन में ऐसा लिखा है तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा.
Come, you who are blessed of my father.
हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ.
It's a wonderful thing which should all long to hear.
और ये बहुत एक अद्भुत चीज है जो हम सब के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हम इसको सुने.
Come, you who are blessed of my father.
हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ.
And he says, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
और वहां लिखा है कि उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है.
Yeah, then the king is saying, I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was stranger, you invited me in.
और आगे जाकर राजा ये कहता है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया. मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया. मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया.
Yeah, when the Lord is reminding the people on the right side, the chosen ones on the right side, reminding them, you did all this to me.
और परमेश्वर जो उसके दाहिने ओर है, जो चुने हुए हैं, उन लोगों को याद दिला रहा है कि ये सारी चीजें तुमने मेरे लिए की.
So what is their response?
तो जब परमेश्वर उनसे ये कहता है तो वो क्या जवाब देते हैं?
Yes, then the verse 37, And then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed and to feed you? When did we see you thirsty to give you something to drink?
और 37वें वचन में वो जवाब देते हैं, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया?
So that indicates that those people, they did not keep a record of all the good thing they did. They did not keep a record.
और इसका मतलब है कि इन लोगों ने जो कोई भले काम किए थे, उन भले कामों को उन्होंने कोई भी स्मरण नहीं रखा.
They are not remembering anything.
वो याद नहीं रख रहे कि मैंने फलाने भले काम किए हैं.
So I was thinking that is how we should be doing good works.
और मैं सोच रहा था कि इस प्रकार हमें भले कामों को करना है.
There is no need of keeping a record of all the good things we have done. A list
मुझे
we have done.
मुझे याद नहीं रखना है कि मैंने एक याद ही नहीं रखनी है कि मैंने ये सारे भले कामों को किया है.
It is best that the Lord is reminding us when he sees us later.
सर्वोत्तम यही है कि परमेश्वर इन कामों का लेखा रखे, परमेश्वर उन चीजों को याद रखे जो मैंने किया है.
We know many many people who beating the drums when they do good things.
और हम जानते हैं कि कई लोग जो जब कोई भले काम करते हैं तो वो बाहर जाकर ढिंढोरा पीटते हैं.
And publish it and speak to others.
और वो लोगों के वो उनके भले कामों के बारे में लोगों को बताते हैं.
That should not the spirit of a righteous person.
एक धर्मी व्यक्ति की ये आत्मा कभी नहीं होती है.
A righteous person will do good works of what is entrusted to him and he never keeps, he never think to remember it again.
एक धर्मी व्यक्ति भले काम करता है पर वो उसको कभी स्मरण नहीं करता, कभी किसी को उसको बारे में याद नहीं दिलाता.
Can apply in a practical way.
और इसको हम एक प्रैक्टिकल इसमें हम उसको लागू कर सकते हैं.
Some good if you had done to a brother or sister sometime back.
अगर कुछ समय पहले हमने किसी भाई या बहन के लिए कोई भली चीज की है.
When we see him again, are we expecting? Are we remembering the good we had done and are we expecting to express gratitude for that?
जब अगली बार हम उस भाई या बहन को मिलते हैं, क्या हमारे अंदर ये अपेक्षा है कि उसे ये बात याद रखनी है और उसको मुझे धन्यवाद कहना है जो मैंने उसके लिए किया है?
Here Jesus is telling verse 40.
और यहाँ 40वें वचन में यीशु मसीह कहता है,
The king will answer to them saying, Truly, truly, I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me.
तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया.
It's good to remember when we do something. Something to a brother, we are not doing it. We are doing Jesus.
और ये याद रखना बहुत अच्छा है कि जब कभी हम कोई भला काम किसी भाई के लिए करते हैं, तो हम उस भले काम को उस भाई के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसको यीशु मसीह के प्रति कर रहे हैं.
And we did not keep a record or even memory a register in the register that in our memory.
और हमें इस चीज का लेखा नहीं रखना है, हमें इसको याद नहीं रखना है.
And we should not expect in return a word of thanks or an expression of thanks.
और हमें ये अपेक्षा नहीं करनी है कि सामने वाला आकर मुझे मैंने जो अच्छा काम किया है उसके लिए धन्यवाद कहेगा.
And let Jesus remind us about it.
ऐसा होना चाहिए कि यीशु मसीह हमें याद दिलाता है कि हमने कोई भला काम किया था.
Let us hear it from Jesus the word you did it to him you actually did it to me.
यीशु मसीह से हमें सुनना है कि यीशु मसीह हमें कहता है कि जो तुमने उसके लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया है.
Just want to one more thing in Matthew chapter 7.
एक और मत्ती उसके सातवें अध्याय में.
Matthew chapter 6.
मत्ती का छठा अध्याय.
Verse 2.
और उसका दूसरा वचन.
When you give to the poor, do not sound a trumpet before you, as hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men.
इसलिए जब तू दान करे, तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें।
And he is saying that, concluding that verse, truly I say to you, they have their reward in full.
और यीशु मसीह उस वचन के आखिरी में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
Means that means if for any good thing we had done, if we have received some appreciation from some human being, we have received our full reward from man already.
इसका मतलब है, अगर हम कोई भी भला काम करते हैं और उसके लिए हम मनुष्यों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करते हैं, तो हमने उस भले काम का पूरा प्रतिफल हम पा चुके।
Then nothing more to be received from God when we see Jesus.
और फिर परमेश्वर के द्वारा हमें और कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा जब यीशु मसीह को हम देखेंगे।
Because reward is already received in terms of honor or appreciation by others.
क्योंकि जो प्रतिफल था वो तो हम पा चुके, प्रशंसा की ओर पर या लोगों से हमने आदर प्राप्त किया उस तौर पर।
Verse 3 says that when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing.
और तीसरे वचन में ये लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानना पाए।
And verse 4, so that your giving will be in secret.
और चौथे वचन में लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे।
And your father who sees what is done in secret will reward you.
और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
So this is how we should be engaged in good deeds.
और इस प्रकार हमें भले काम करने हैं।
As secret as possible.
जितना हम गुप्त तरीके से कर सकते हैं उतना हमें उसे गुप्त रखना है।
Even without a remote secret desire inside our heart to receive some appreciation.
हमारे दिलों में एक छोटी सी भी ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मुझे इस भले काम के लिए प्रशंसा प्राप्त करनी है।
Either from the person whom we have helped or someone else.
उस व्यक्ति से भी प्रशंसा नहीं पानी जिसकी मैंने मदद की है या किसी और से भी नहीं।
So that we can receive the full reward from the Father in heaven.
ये इसलिए ताकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसके द्वारा हमें पूरा प्रतिफल प्राप्त करना है।
हितोपदेश 12 को 28 बार
Proverbs chapter 12 verse 18
नीति वचन उसका 12 और 8वां वचन
18
18 वचन
ओके
28वां वचन माफ करना
28 verse 28 sorry
नीति वचन 12 28
पढ़ दो उधर
धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं।
मलाई चाहिँ परमेश्वरले यो पद द्वारा चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो।
जीसस कॉल्ड मी थ्रू दिस वर्स
और प्रभु ने इस वचन से मुझे बुलाया।
किनकि म एउटा नाम कमाएर यो संसारमा प्रख्यात बन्ने मेरो इच्छा थियो।
Because I wanted to be famous through my name.
क्योंकि मैं इस संसार में कीर्ति प्राप्त करना चाहता था।
अने मुझे ये उटा सिंगर बनना चाहते।
And I wanted to be a singer.
और मैं गायक होना चाहता था।
और मुझे नाम कमाना चाहते गायक बाहर।
And I want to be famous. Through my name.
और मैं नाम कमाना चाहता था।
इसको लागी मैले धेरै परिश्रमहरु पनि गरे।
And I worked very hard for that.
और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी की।
र म जब गाउनको लागि एकदमै सिकेर अब चाहिँ म राम्रो गाउन सक्छु भन्ने मलाई लागिरहेको थियो.
And when I learned to sing very well, and I thought that I can sing very well now.
और जब मैंने गाना सीख लिया, अच्छे से गाना सीख लिया, तो मैं सोचता था कि अब मैं बहुत अच्छे से गा सकता हूँ.
पर परमेश्वर ने मलाई यो वचन देखाउनु भयो.
But God showed me this verse.
पर परमेश्वर ने मुझे इस वचन को दिखाया.
मैले इन्ने बाटो चाहिँ खास त्यो होइन रहेछ.
That was not my way where I should walk on.
परमेश्वर ने दिखाया कि ये वो मार्ग नहीं है जिसमें मुझे चलना है.
तो हितोपदेश 28 ले भन्दछ, 12 को 28 ले.
And this verse says, verse 28 says.
और यहाँ 28वें वचन में लिखा है.
धार्मिकता को मार्ग में मात्र जीवन छ.
And life is only on way of righteousness.
यहाँ लिखा है धर्म के मार्ग में ही जीवन मिलता है.
अनि मैले सोचे, अनि मैले हिन्ने बाटोले चाहिँ मलाई कहाँ पुर्याउँदैछ.
And I thought that what my ways lead to me.
और मैं सोचने लगा कि मैं जिस मार्ग में हूँ उस मार्ग मुझे कहाँ ले जा रहा है.
इस कारण ने मलाई था भयो कि
सो आई न्यू दैट.
और इसलिए मैं जान गया
मेरो बाटो चाहिँ मृत्यु को बाटो रहेछ.
दैट माई वे वाज द वे ऑफ डेथ.
कि मेरा जो मार्ग था वो मृत्यु का मार्ग था.
मैले चाहेको चाहिँ अमर बन्नलाई थियो.
And what I wanted was to be like eternal. Or I didn't want it.
Brother, can you repeat?
म चाहिँ अमर बन्न चाहिरहे.
And I wanted to be.
Rich.
मैं जो
बठुल बाबा एकचोटि
म अमर बन्न चाहिरहेको थिएँ.
And I didn't I wanted to be yes I didn't get the word अमर
immortal अमर
immortal yes yes
हाँ और मैं अमर होना चाहता था.
तर मेरो बाटो चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ बाटो थियो मृत्युको.
बट माय वे वाज अफ डेथ.
पर मेरा जो मार्ग था वो तो मृत्यु का मार्ग था.
इस वचनले मलाई जीवनको मार्ग देखाउने काम गर्यो.
एन्ड दिस वर्स शोड मी द वे अफ लाइफ.
और इस वचन ने मुझे जीवन का मार्ग, जीवन का रास्ता दिखाया.
योहन्ना 14 को 6 हेरौँ.
And let's look at John chapter 14 verse 6.
और हम योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका उसके 6 वचन को देखेंगे.
बाटो सत्य जीवन प्रभु नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हामी पाउन सक्छौं.
And we can see here
यीशु ने उसे कहा मार्ग.
We can see here God is way, truth and life.
और यहाँ यीशु कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ.
त्यसैले जुन अनन्त जीवन को बाटो थियो त्यो चाहिँ मैले प्रभु यीशुमा भेट्टाउन सके.
एन्ड आई फाउन्ड द वे अफ इटर्निटी इन जीसस.
और मैंने अनंत जीवन के मार्ग को सिर्फ यीशु मसीह में पाया.
प्रभुलाई धन्यवाद होस्. आमेन.
Thank you for Lord. Amen.
और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. Amen.
Yeah. So I thank God for all the encouraging words that we heard now.
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सारे प्रोत्साहन के शब्दों के लिए जो हमने सुने.
Like one thing that encouraged me in this week was like, in fact, it challenged me was from Philippians chapter 2.
और इस हफ्ते में एक चीज ने जिससे जिससे मैंने प्रोत्साहन भी पाया और मैंने चुनौती भी प्राप्त की, वो थी फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय से
chapter verse 14
और फिलिपियों दूसरा अध्याय और उसका 14वां वचन.
इट सेज दैट डू ऑल थिंग्स विदाउट कंप्लेनिंग और grumbling or disputing, so that you will prove yourself to be blameless and innocent, children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as light in the world.
Philippians 2, उसका 14 और 15. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो.
Like this took me back to an incident in my office.
और इस वचन को पढ़कर मेरे ऑफिस में जो एक घटना घटी थी उसको मुझे वो याद आई.
Like I and my colleague along with my manager, we had a discussion.
Sorry, we had a?
I, my manager and one of my colleague, we three had a discussion.
मैं और मेरे साथ एक सहकर्मी और हमारे जो मैनेजर थे उनमें हमारी एक चर्चा हो रही थी.
So my manager is also a believer.
और मेरे जो मैनेजर है वो भी एक मसीही है.
She used to like talk openly to both of us. So like while discussing, she was saying the things that management was doing to her, all the complaints and all those stuff.
और वो हम दोनों को ये बता रही थी जो जो कोई काम हो रहे थे, जो कोई दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा था.
Like even I had those complaints in my heart, but I did not say it out.
मेरे मन में भी ये जो एक complaint थी, एक ये था, पर मैंने उसको बोला नहीं था.
So my other colleague who is not a believer, she directly told you know my manager that like you say that you follow Christ, but even you have no peace, even I have no peace. What is the difference?
और मेरी जो सहकर्मी थी, जो एक मसीह नहीं थी, उसने मेरे मैनेजर से कहा कि तुम भी मसीह का तुम जो मसीह का अनुकरण करती हो, तुम्हारे अंदर भी शांति नहीं है, मेरे अंदर भी शांति नहीं है, तो हमारे में क्या भिन्नता है?
So that word, you know, really struck me. Like even I had complaints in my heart, and we all know that God, you know, looks at our heart. Though I did not say it out, you know, over a period of time, to maintain our testimony, it's possible that we keep things in our heart, we don't say it out.
और मेरे मन में भी ये कुड़कुड़ाहट थी, भले ही मैंने उनको शब्दों में नहीं कहा था, पर परमेश्वर जो है वो हमारे हृदयों को देखता है, और काफी समय से मेरे दिल के अंदर भी ये कुड़कुड़ाहट थी.
In this verse, we are called to be children of God and we are to be the light of the world.
और इस वचन में परमेश्वर की हमारी ये बुलाहट है कि हमें परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहना है और हमें जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देना है.
And the verse above it really encouraged me because I know this is a mountain for me to conquer yet.
और इसके ऊपर का जो वचन है उसने सचमुच मुझे प्रोत्साहन दिया और मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए एक पहाड़ है जिसको मुझे चढ़ना है.
It says in like verse 13 that it is God who is at work in you both to will and to work for his good pleasure.
और 13वें वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है.
So I really believe that God is in work at me to make me will and to do what his will is.
और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन में ये इच्छा और काम किया है कि मैं उसकी सुइच्छा कर पाऊँ.
One of the thing that I feel, you know, we complain, like I complain, is because I have not realized the love of God or I lack the attitude of thankfulness to God.
और एक कारण है जिस मेरे कुड़कुड़ाने का एक कारण है कि मैं धन्यवाद देना नहीं सीखी हूँ और परमेश्वर का जो मेरे प्रति प्रेम है उसको मैंने नहीं देखा है.
Like yesterday, like Abu Uncle said, it was from Philippians 4 that it's a secret that we need to learn to be to be content in all circumstances.
और कल जैसे अबू अंकल ने बताया कि फिलिपियों के पत्री के 4 अध्याय से हमें ये सीखना है कि हर हाल में संतुष्ट होते हैं.
आमेन.
आमेन.
या या आई वाज रियली ब्लेस्ड बाय द वर्ड व्हिच ब्रदर शेयर्ड.
और जो भाइयों ने जिस वचन को बांटा उसके द्वारा मैं सचमुच आशीषित हुआ.
व्हाट ब्रदर राजेश शेयर्ड अबाउट द मास्टरपीस.
और जो भाई राजेश ने बताया कि जो मैं प्रभु परमेश्वर के हाथ का एक काम हूं उसके बारे में.
एज यू नो Abhankar shared that Ephesians 2 verse 10 that we are the workmanship God created for good works.
और इफिसियों 2 में जो लिखा है कि हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हुए हैं जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किए हैं.
Verse 9. So I was, you know, few months back I was just taking looking for the meaning what is a workmanship. So in Greek, workmanship is like a poem God created.
और कुछ कुछ महीनों पहले मैं इस पर सोच रहा था कि परमेश्वर का बनाए हुए होना इसका क्या अर्थ है. तो मैंने देखा कि यूनानी भाषा में इसका मतलब है एक एक कविता.
So God has created, God had, you know, written that a song. It's like a poem about my life, that what I should do in my lot in this earth.
और ये उस समान है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक कविता को लिखा है या एक गीत को लिखा है कि मैं अपने जीवन में क्या करता हूँ.
So that, you know, I should glorify God.
जिससे करके कि मैं परमेश्वर को महिमा दे पाऊँ.
So there is a two verses which was coming in my mind in 2 Timothy 2:22.
और दो वचन मुझे याद आ रहे थे. एक था दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय.
Verse 22, it is written that flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart.
दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय और 22वां वचन. जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर.
So that is one thing which, you know, as a young disciple, I just want to see that I should be a clean vessel where God can bless with my, you know, whatever I'm speaking, or just, you know, do a fellowship with other people or through my life.
और एक जवान शिष्य होकर इस बात को मैं ध्यान रखना चाहता हूँ कि मैं एक शुद्ध शुद्ध पात्र बनूं.
There is one verse in Hebrews 11 verse 16.
इब्रानियों 11 के छठे वचन में ऐसा लिखा है. 16वां वचन.
So this is a verse which I always cherish in my heart.
और ये वचन है जो मैं मेरे मन में हमेशा याद रखता हूँ.
But now they desire a better thing, a better that is a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them.
पर वे एक उत्तम, अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं. इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ला जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है.
So this is a thing, you know, God should not ashamed about me that God, whatever life I'm living, that God should be proud about me that yes, I am the God of Shyam. He's walking in my ways like Enoch walked.
और परमेश्वर को मेरे जीवन को देखकर उसे लजाना नहीं चाहिए कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, बल्कि मेरे जीवन को देख के उसे एक अभिमान होना चाहिए कि वो कह सके हाँ मैं श्याम का परमेश्वर हूँ.
So he should not be ashamed about my secret things, whatever I'm doing, you know, in my personal life and things about in my office and, like, you know, their sister told and about my murmuring, grumbling, anything. But he should be proud that I'm walking in his ways, though I am failing many times, but still I'm, you know, coming up again.
और वो परमेश्वर को कभी भी मेरे जीवन के बारे में लज्जा नहीं लगनी चाहिए. मेरे गुप्त में मैं जो करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं जो करता हूँ, जैसे सिस्टर ने बताया, मेरे ऑफिस में मैं जो कुछ करता हूँ, मुझे किसी भी चीज में कुड़कुड़ाना नहीं है.
Yeah, so that is one thing that God, you should not be ashamed about my life, that, you know, I just want to live for you alone.
और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी मेरे जीवन को देखकर लजाए नहीं, और मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ.
Yesterday I was discussing with one of the brother, young brother. So he was telling me like that, Shyam, I'm, you know, thinking that every day God is telling me that that fear of the God is increasing in your life day by day, or not. If it is not increasing, there is a serious concern about your life.
और कल मैं जवान भाई से बातचीत कर रहा था और वो मुझसे कह रहा था कि हर दिन परमेश्वर उसे कह रहा था कि तू अपने जीवन में देख कि हर दिन तेरे जीवन में जो परमेश्वर के प्रति भय है वो बढ़ते जा रहा है या नहीं. अगर वो तेरे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं बढ़ रहा तो ये एक गंभीर बात है.
So like that, we have to check that whether, you know, I'm serious to growing in the Lord or not, and take necessary step and, you know, to ask God for forgiveness.
और इसलिए मुझे अपने जीवन को जांचना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर के भय में मैं बढ़ रहा हूँ या नहीं. अगर नहीं तो मुझे उसको उसको सही करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा.
या आमीन
आमीन.
I want to praise God for today's message.
मैं परमेश्वर को स्तुति देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इस आज के संदेश के लिए.
Brother Rajesh was sharing about masterpiece.
और भाई राजेश जो है वो परमेश्वर के हस्तकृति के बारे में, उसके हाथ के कामों के विषय में बता रहे थे.
I was so blessed and something came to my mind.
और मैं बहुत आशीषित हुई और कोई चीज मेरे मन में आई.
Masterpiece is mostly we see when an artist does something.
और जो हस्तकृति या किसी के हाथ के कामों के बारे में जब हम सुनते हैं तो कई बार एक जो चित्र बनता है उस चित्र के बारे में हम सोचते हैं.
Like an artist does paintings and in those paintings some of them are a masterpiece.
और जो कलाकार अगर बहुत सारे चित्रों को चित्र बनाता है तो उन चित्रों में से कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो उसके सबसे अच्छे काम कहलाए जाते हैं.
And some of the paintings of masterpieces like if you see like Mona Lisa and all that things, these paintings are a masterpiece of the painter.
और अगर हम कुछ चित्रों को देखें जैसे मोनालिसा नाम का एक चित्र है तो उस विशिष्ट जो कलाकार होता है उसके हाथ से ये सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट चित्र होता है.
The meaning of masterpiece is when you see the dictionary, it says it's an extraordinary skill.
और जब हम मास्टरपीस या बनाए हुए सबसे उत्कृष्ट काम के बारे में जब हम शब्दकोश में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो सबसे बेहतरीन उसका काम है.
So I was thinking that God made each one of us with extraordinary skill.
और मैं सोच रही थी कि परमेश्वर ने बहुत ही बेहतरीन कुशलता से हम सबको बनाया.
Yeah, and here in Ephesians verse chapter 2 and verse 10 says that we are his workmanship created in Christ Jesus for good work.
Or Ephesians, sorry?
Which God prepared beforehand so that we could walk in them.
और इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय के दसवें वचन में लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया.
Yes, so beforehand God has planned something before he formed us. In Psalms it says even before we were in the our mother's womb God knew what he had planned for us.
और इसलिए परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए कुछ तैयार किया था हमारे सृजे जाने से भी पहले. और इसलिए भजनकार कहता है कि मैं मेरे माँ के गर्भ में रचा गया उसके पहले से उसने मेरे बारे में सोचा था.
Even before I was formed, he knew exactly how my face would be and how each one would be. You know, he had worked like that.
और उसने मेरी रचना करने के पहले से वो जानता था कि मेरा चेहरा कैसे दिखेगा और उसने मुझे पहले से उसके तैयार किया है.
As in Genesis 1, it says that everything God did was good.
और उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने किया वो अच्छा था.
So everything what he has planned for my life is for my good.
और इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए जो भी योजना रखी है वो अच्छी है.
Yes, and so that he has predestined it.
और उसने ये पहले से ही निर्धारित किया है.
So what is that workmanship that God wants to do in my life?
और इसलिए वो क्या काम है जो परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है.
That masterpiece that God wants to perform in each one of our lives.
जो उत्कृष्ट काम हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर करना चाहता है.
And that is in I want to share from Romans chapter 8.
और मैं रोमियो की पत्री उसके आठवें वचन से इसको बांटना चाहती हूँ.
8:29 verse 29.
रोमियो आठवां अध्याय और उसका 29वां वचन.
For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son, so that he would be the firstborn among many brethren.
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे.
So God predestined me. He has wants to make me a masterpiece like Jesus Christ.
और परमेश्वर से परमेश्वर ने पहले से ये ठहराया था, ये निर्धारित किया था कि मैं उसके पुत्र के स्वरूप में एक उत्तम उसकी हस्तकृति बनूं।
So the calling, God has called me to be more like Jesus.
और परमेश्वर ने मेरी परमेश्वर में मेरी बुलाहट है कि मैं और यीशु मसीह के समान बनूं।
And that is the masterpiece that God wants to perform in each one of our lives.
और ये एक उत्कृष्ट काम परमेश्वर हम सबों के जीवन में करना चाहता है।
Make us more like Jesus.
कि वो हमें और यीशु मसीह के समान बनाए।
I praise God that you know in many ways we when we judge ourselves we will see that we are so far away from Jesus.
और अगर कई तरह से हम अगर खुद को जांचते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम कई जगहों में कई क्षेत्रों में यीशु मसीह से काफी दूर है।
So I want to take this to heart that really that in most of my ways where I am not like Jesus that I will want to repent and ask the Lord to help me to be more like Him.
और इसलिए मैं इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहती हूँ कि मेरे जीवन के जिन क्षेत्रों में मैं परमेश्वर के जैसे नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह के समान नहीं हूँ, मैं उन क्षेत्रों में पश्चाताप करके यीशु मसीह के समान बनना चाहती हूँ।
Yeah, it says for every good work.
क्योंकि यहाँ लिखा है कि हर एक भले काम के लिए।
One more verse that was coming to me is from Acts chapter 10 verse 38.
एक और वचन जो मेरे मुझे याद आया था वो था प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसका 38वां वचन।
It tells about Jesus here.
यहाँ यीशु के बारे में कहा है।
You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil.
यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 10:38 में परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था।
I want to thank God that you know as Jesus was when he was on this earth he was only doing good.
और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि जब यीशु मसीह संसार में था वो सिर्फ और सिर्फ भले काम करता था।
When people tried to harm him, his only thing was to do good to them and to save them.
और जब लोग उसको हानि भी पहुंचाना चाहते थे तभी भी यीशु मसीह सिर्फ उनके लिए भला करता था और उनका उद्धार करने के बारे में वो सोचता था।
When they mocked him, as we heard, when he was on the cross, when they mocked him and spat on him, Jesus' only aim was to that these people will be saved, and he said, Father, forgive them.
और जैसे हमने सुना कि जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो उसके बारे उसकी ठट्टा उड़ाई गई, उसपे लोगों ने थूका, पर फिर भी यीशु मसीह की यही चाहत थी कि वो इन सब लोगों का उद्धार कर पाए और इसलिए उसने कहा कि पिता इन लोगों को क्षमा कर।
So that is the only thing Jesus wanted to do.
और ये एक ही चीज ये केवल एक ही चीज थी जो यीशु मसीह करना चाहता था।
And I want to become like that. I am not like that, but I want this is my aim in life that I want to become more like Jesus.
और इसलिए मैं ऐसे बनना चाहती हूँ, मैं अभी वैसे नहीं हूँ पर ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे यीशु के जैसे बनना है।
That I will, God will really at the end of my life, God will say this, Mabel was my masterpiece.
इसलिए कि जब मैं मेरे जीवन के अंत तक आती हूँ तब परमेश्वर कह पाए कि मेबल मेरे हाथ की एक उत्तम कला हस्तकृति थी।
And same way he can say for each one of us that these are my masterpiece.
और उसी प्रकार वो हम सबके बारे में कह सकता है कि ये मेरे हाथ से बनाए हुए सबसे उत्कृष्ट काम थे।
I was blessed by the word we heard today.
जो वचन को आज हमने सुना उससे मैं बहुत आशीषित हुआ।
I was thinking that all the religions in the world they speak about good works.
और मैं सोच रहा था कि इस संसार में जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों में अच्छे काम करने के बारे में सिखाया है।
But there's a difference when we speak about good works.
पर हम मसीह लोग जब अच्छे कामों के बारे में कहते हैं तो उसमें एक फर्क है।
Because when the people of other religions they speak about good works, it is mostly where they say that my good works will earn me my salvation.
क्योंकि जब बाकी धर्मों में लोग अच्छे कामों के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरे अच्छे कामों के वजह से मेरा उद्धार होगा।
Or they want to be accepted by God based on the good works.
या जो भले काम वो करते हैं उन भले कामों के वजह से वो चाहते हैं कि उनका परमेश्वर उन्हें स्वीकार करे।
But when we as Christians we want good works, we want to do good works, it is because God has accepted, already accepted us, and because of the love of God, we are now doing good works.
पर जब हम मसीह लोग भले कामों के बारे में सोचते हैं तो हम भले काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही हमें स्वीकार किया है और परमेश्वर का प्रेम है जिसके वजह से हम इन भले कामों को करते हैं।
In Hebrews chapter 10 verse from verse 19, I'll just read and I'll close.
इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 19 वचन से आगे मैं पढ़कर समाप्त करूंगा।
It says, therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, which he inaugurated for us through the veil, that is his flesh, and since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who is promised is faithful. After saying all these verses, this is the basis of what we come to Christ, or what we come to God.
और 19 से लेकर 23 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और ये पार्श्वभूमि है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है।
So after having all said all these things on the basis of this, this is the foundation of a Christian faith.
और ये सारी चीजें कहने के बाद, ये सारी चीजें हैं जो ये जो मसीह विश्वास है उसकी नींव है।
After that, it says in verse 24, let us consider how to stimulate one another to love and good deeds.
और इस ये सब कहने के बाद वो 24वें वचन में कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें।
So any day I come before God, it is not based on my good deeds.
और किसी भी दिन जब मैं परमेश्वर के सामने आता हूँ, तो वो मेरे भले कामों के द्वारा मैं नहीं आता।
But based on what Christ has done for me.
बल्कि जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है, मैं उसके वजह से उसके सामने आता हूँ।
And the good deeds are to show forth the love of God, which God has given in my heart.
और जो मैं भले काम करता हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ, वो परमेश्वर के प्रेम को जो उसने मेरे मेरे दिल में डाला है।
It is very important that the order is not reversed.
और ये बहुत जरूरी है कि ये जो दोनों चीजों का जो क्रम है, इस क्रम को मैं कभी भी उल्टा नहीं करता।
Otherwise, the good works will become dead works.
अगर मैं इस क्रम को उल्टा करता हूँ, जो मेरे भले काम है वो मरे हुए काम हो जाएंगे।
Thank you.